इसके साथ ही कामना कमल कुंज का प्रसंग समाप्त होता है। आज के कुछ पृष्ठों में स्वामी जी महाराज ने इतना ही कहा है, मैं स्वयं राम राम जपता रहूं और दूसरों को राम नाम की मुरली या बांसुरी सुनाता रहूं। भक्ति की बांसुरी राम नाम की मुरली सबके सामने बजाता रहूं। राम राम जपो जैसे मैं जप रहा हूं। आज के इतने पृष्ठों में जो सार है, सारा सार वह यही है, जैसे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जैसे मैं राम राम जपता हूं वैसे आप सब भी राम राम जपते रहा करो। परिस्थितियां नहीं बदलती, परिस्थितियां इनको बदलना भी नहीं, अनुकूल प्रतिकूल आती ही रहेंगी जाती रहेंगी। दुख आया है तो चला जाएगा, सुख आया है तो वह भी चला जाएगा। सो इनका आना जाना बना रहेगा, इनको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं। महत्व देने की एक चीज को जरूरत है, वह है जैसे मैं राम राम जप रहा हूं वैसे आप सब राम राम जपते रहो। सुंदर बात लिखी स्वामी जी महाराज ने, राम नाम की मुरली भक्ति की बांसुरी सुनाता रहूं। मानो प्रेम पूर्वक राम राम जपने के लिए स्वामी जी महाराज हम सबको आज इन कुछ पृष्ठों में प्रेरणा देते रहे हैं। कल की चर्चा साक्षण करूं कर्म हितकार पाकर तुष्टि सृष्टि को करूं कर्म हितकार, इस पंक्ति पर चर्चा चल रही है। परमेश्वर का दान खाके क्या हो, पाकर तुष्टि सृष्टि को करूं कर्म हितकार। मुझे आपके द्वारा दिए हुए दान से तुष्टि भी मिले, पुष्टि भी मिले, और मैं तुष्ट पुष्ट होके तो हितकर कर्म करो, पर हितकर दूसरों के प्रति जो मेरे कर्म हो हितकर कर्म हो, हितकारी कर्म हो। इसके अंतर्गत कल चर्चा शुरू हुई थी धर्मराज युधिष्ठिर की, कल आपसे अर्ज की थी पांडु अपने उत्तराधिकारी राजा परीक्षित को राज्य सौंप के स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े हैं। कुंती द्रौपदी अर्जुन भीम नकुल सदैव सब साथ हैं, राजा युधिष्ठिर भी। एक एक करके गिरते जाते हैं, मरते जाते हैं और अपने अपने स्थान को चलते जाते हैं। युधिष्ठिर की बारी है, सबको जाना है। चाहे वह युधिष्ठिर हैं, चाहे वह कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, चाहे वह धनुषधारी रामचंद्र हैं, जो जन्मा है देवी और सज्जनों, वह जाके रहेगा, मर के रहेगा। बर्थ कितना सुंदर कहा है, बर्थ गारंटीज डेथ, जन्मे हो तो मर के रहोगे, यह नहीं रह सकते आप। थोड़े समय के लिए आए हो, वापस लौटना है। अंश हो तो अंशी के पास लौटना ही जीवन का लक्ष्य। जीवन कहां से शुरू होता है, कहां अंत होता है, अंश बन के आए थे अंशी के पास चले जाना है। मिट्टी का ढेला लो आप, जोर से जितनी मर्जी जोर से ऊपर फेंको, जिसका अंश है या उसे वापस बुलाती है। आप उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहो, आप उसे कुछ कहो, वह अंश जो ऊपर आपने उठाया था उसे ऊपर फेंका था, वह अपने अंशी से मिलके रहेगा। लहरें सागर में उठती हैं, छोटी बड़ी, लगता है बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, पूर्णिमा में बहुत ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं, लेकिन अपने अंशी के साथ मिलके ही उन्हें चैन आता है। राजा युधिष्ठिर की बारी है, एक कुत्ता देखा है रास्ते में, बड़ा भारी जख्म है, बू मार रहा है, जख्म में कीड़े पड़े हुए, संवेदनशील हृदय है राजा युधिष्ठिर का, सामान्य हृदय नहीं है, क्रूर हृदय नहीं है, युद्ध तो किया, युद्ध में अस्त्र शस्त्र तो राजा युधिष्ठिर ने भी चलाए, लेकिन भीतर से क्रूर नहीं है, दानी है, दूसरों का हित करना चाहता है, दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है, यही करुणावान के चिन्ह है, यही संवेदनशील के चिन्ह है। कुत्ते को देख के तो मन पिघला, हृदय द्रवित हुआ, कुत्ते के पास चले गए, देखा कीड़े पड़े हुए हैं, काफी बड़ा जख्म है, उस जख्म से बू आ रही है। कुत्ते की पीड़ा को स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महसूस कर रहे हैं, यह साधक का चिन्ह है। प्रार्थना करने वालों, यदि आपको दूसरे की पीड़ा ही महसूस नहीं होती तो आप की पुकार कौन सुनेगा, आपके हृदय से पुकार निकल ही नहीं सकेगी, तभी निकलेगी हृदय से पुकार जब आप दूसरे की पीड़ा, जब आप अपने आप को दूसरे के पांव में डालोगे तो पता लगेगा कि कहां कील चुभ रहा है, कहां कांटा चुभ रहा है, तो आप उसे निकालने की चेष्टा करो। जब अपने लिए चेष्टा करते हो उसी प्रकार की चेष्टा किसी दूसरे के लिए हो तो उसे प्रार्थना कहा जाता है, या प्रार्थना का रूप ले लेती है। डिलीवरी की पीड़ा पुरुष क्या जाने क्या होती है, महिला जान सकती है, जिसने पीड़ा सहन की हुई है वह जान सकती है कि डिलीवरी की पीड़ा किस प्रकार की होती है, कितनी होती है। तो किसी दूसरी को डिलीवरी के वक्त जाते हुए देख के उसका हृदय द्रवित होगा, परमात्मा सहाय रहना, अपने आप चीज निकलती है। पुरुषों को क्या पता कि डिलीवरी में क्या होता है, क्या पीड़ा होती है, कैसी पीड़ा होती है, ये अनुभव नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कुत्ते की पीड़ा का अनुभव कर रहा है, कीड़े निकालता हूं तो मर जाएंगे, कीड़ों को निकाल के उनकी फूड खत्म हो जाएगी, जख्म खून इत्यादि बीक इत्यादि जो कुछ भी है कीड़ों का भोजन, इन्हें इनका भोजन छीन के बाहर निकाल के फेंकता हूं तो ये मर जाएंगे, यदि वहीं रहने देता हूं जख्म में तो कुत्ता मर जाएगा, पीला से तड़प तड़प के मर जाएगा। ये एक साधक के अंदर संघर्ष चल रहा है। आप सोचते हो ऐसे संघर्ष को संघर्ष कहना चाहिए, साधना है ये, संघर्ष नहीं है ये, साधना है ये, उसकी पूजा है ये, परमात्मा का वास्तविक पूजन है। अतएव क्या करता है राजा युधिष्ठिर, अपनी जंगा पर पत्थर मार के तो जख्म करता है, पत्थर पास से लेके अपनी जंगा पर ये जगह जोर से पत्थर मार के तो यहां जख्म करता है, जख्म करके कुत्ते के जख्म से कीड़े निकाल निकाल के तो अपने जख्म में डालता रहता है ताकि वे भूखे न मर जाएं, उन्हें अपनी खुराक मिलती रहे। बेटा बड़े बनना बहुत कठिन काम है, संसार की दृष्टि में नहीं, संसार की दृष्टि में तो सत्तावान पद प्रतिष्ठावान बड़ा है, यहां इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया सो वट, वहां जाके नरक की यातनाएं यदि भुगतनी पड़ती हैं तो ये इतिहास में पन्नों में नाम लिखा जाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बात तो वहां की है जहां जाना है, वहां जाके क्या हालत होती है ये देखना है, तैयारी तो वहां की करनी है, वहां जाके हमारा इस प्रकार का हश्र ना हो कि हमें नरक की यातनाएं जो है वह भुगतनी पड़े। अतएव साधक बहुत फूंक फूंक के पांव रखता है, एक एक कीड़े को निकाल के अपने जख्म में डालता जाता है। कीड़े भी बच गए, कुत्ता भी बच गया। देवी देवता इस दृश्य को देख के तो फूलों की वर्षा कर रहे हैं धर्मराज श्रेष्ठ पर। वाह धर्मराज, वाह वाह धर्मराज, वाह। कहते हैं साधक्षण, साक्षात धर्म प्रकट हो गया। धर्म प्रकट होके तो राजा युधिष्ठिर को आशीर्वाद ही नहीं देते, ज्ञान भी देते हैं। कहते हैं धर्मराज, जितने तेरे साथ आए थे सब छूट गए, तू अकेला। मानो धर्मराज ये यात्रा चाहे धर्मराज की है चाहे किसी कंगाल की है, चाहे किसी संत महात्मा उच्च श्रेणी के संत की है या महापापी की है, ये यात्रा धर्मराज सबको अकेले ही करनी है। तू अकेला, अपने जीवन काल में न जाने तूने कितने घर बसाए हैं, कितना धन उपार्जन किया है, कितना दान दिया है, कितना लोगों का भला किया है, इत्यादि इत्यादि। इस वक्त तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, मैं हूं। धर्म कहता है मैं हूं। धर्म क्या शिक्षा दे रहे हैं धर्मराज को और हम सबको, धर्मराज के माध्यम से, युधिष्ठिर के माध्यम से ये यात्रा हर एक को अकेले ही करनी है। यदि किसी ने जिंदगी में धर्म कमाया है तो वह धर्म साथ जाएगा, और यदि अधर्म कमाया है तो फिर अधर्म भी साथ ही जाएगा। तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं, मैं हूं। आओ दोनों चलते हैं। धर्म अपने साथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेके जाते कल साक्षर इसी बात पर चर्चा की जा रही थी, वह क्या है जो अपने साथ जाएगा। धर्म समझाता है नाम की कमाई आपके साथ जाएगी, जिसे सिमरन कहा जाता है, सेवा आपके साथ जाएगी। अनेक सारे शब्द हैं साधक जनों जो स अक्षर से शुरू होते हैं, सिमरन, सेवा, संयम, सत्कर्म, सद्विचार, सद्वृत्तियां, अनेक शब्द जो अक्षर स स से, सत्संगति सबसे ऊपर, सत्संगति पीछा नहीं छोड़ती। यदि आपने किसी सुकर संत की सत्संगति की है तो वह वहां तक जहां जाना है वहां तक भी आपके साथ जाएगी, वह पीछा नहीं छोड़ती। अनेक सारे शब्द जो अक्षर स से शुरू होते हैं साधक्षणों, धर्म समझाता है यही साथ जाने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। धन कमाया है आपने, बहुत अच्छी बात की, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में, एक ढेला एक दमड़ी इसकी साथ नहीं जाएगी। आप मानते हो ना साधु, है ना आप सबका अनुभव, बुलावा आता है तो सब कुछ जिस जिस बैंक में पड़ा हुआ है वहीं रह जाता है, जिस जिस तिजोरी में पड़ा हुआ है वहीं रह जाता है। ये धन ईमानदारी से कमाया है या बेईमानी के साथ कमाया है, हेरा फेरी के साथ कमाया है, ये ईमानदारी या बेईमानी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये साथ जाएगी। तो किस बात पर आपको, किस बात की चिंता आपको होनी चाहिए? धन कमाने की चिंता होनी चाहिए या जिन मींस से धन कमाया जाता है उसकी चिंता होनी चाहिए? एक यहीं रह जाने वाला है और एक परमात्मा के दरबार में आपके साथ जाने वाला है। एक को मेरी माताओं बाह्य संपदा कहा जाता है, जो यहीं की यहीं रह जाती है, यहीं टिकी रहती है, उसको कोई माई का लाला आज तक न लेके गया है, ना कोई लेके जाएगा, एक दिन का भी नहीं। उसे बाह्य संपदा कहा जाता है, एक भीतरी संपदा होती है, उसे इकट्ठी करो, उसे कमाओ, फिर उसे संचित करो और फिर उसकी संभाल करो कि उजड़े ना। पहले भीतरी संपदा की कमाई करो, आप तो बाह्य संपदा की कमाई अभी कर रहे हो ना, लगे दिन रात दौड़ धूप मार धाड़ मची हुई है, बाह्य संपदा इकट्ठी हो रही है, भीतरी संपदा लुट रही है। क्यों? बाह्य संपदा कमाने में बहुत कुछ करना पड़ता है, तो भीतरी संपदा, असली संपदा, वास्तविक संपदा जो है वह उसमें लुट रही है। और रस ही, कम से कम श्वासों की संपदा तो लुट ही रही है, वो तिजोरी हो सकता है बढ़ रही हो, जिसे लोहे की तिजोरी कहा जाता है या मेटल की तिजोरी कहा जाता है, वह तिजोरी में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन श्वासों की तिजोरी तो नित्य प्रति घटती जा रही है, घटती जा रही है। श्वास तो उतने ही लेने हैं ना, जितने लिख के आए हुए हो, जितने लिखवा के आए हुए हो, एक श्वास अधिक, वह संपदा घटती जा रही है। क्या करना चाहिए साधक जनों, परसों कर लेंगे चर्चा इसकी, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। याद करते करते जाना, भीतरी संपदा कमानी है, अर्जित करनी है, कमानी अर्थात अर्जित करनी है, संचित करनी है, तथा इसे नष्ट होने से बचाना है, स्टोर करना है इसे। इन्हीं बातों को याद करते करते साथ ही साथ राम राम जपते हुए घर लौटिएगा। धन्यवाद।